ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोकहितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ तेरहवा पाठ सम्यक ज्ञान संस्कार दर्शन प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताया जा रहा है। नहीं अभी जमा नहीं, देखो पॉइंट गड़बड़ है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोषोधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार ये जो 12 प्रतिमाएं हैं, हाँ 11 प्रतिमाएं हैं, ये संयम की ओर जाने के लिए माध्यम हैं। इन प्रतिमाओं के माध्यम से पंच पापों को हम कम करते हुए चले जाते हैं। पंच पाप ही जीवन के लिए आश्रय और बंध में कारण पड़ते हैं। आश्रय न हो और बंद न हो, इसके लिए क्या करें? तो संवर और निर्जरा का मार्ग अपनाएं। संवर किससे होता है? संवर मुख्य रूप से देखा जाए सम्यक दर्शन और संयम, ये दोनों संवर के लिए कारण है। संवर के पश्चात तप है, संयम और संयम में सम्यक दर्शन के पश्चात यदि हम तप को अपनाते हैं तो निर्जरा बढ़ जाती है। संयम से जो निर्जरा होती है वो सामान्य रूप से होगी, तप से जो निर्जरा होगी वो विशेष रूप से होगी। संयम रोकने का द्वार है, कर्मों को जो आ रहे हैं उनको रोकने के लिए साधन है संयम और सम्यक दर्शन। परंतु कर्मों को स्पीड से अंदर से बाहर निकालना हो तो क्या करें? तप और परिशह आदि जो उत्तर गुण बताए गए हैं उनको अपना करके कर्मों को विशेष रूप से अंदर से बाहर निकाला जाता है, यानी निर्जरा की जाती है। नाव में बैठा है नाविक और छेद हो गया है, नाव में छेद हो गया है तो पहला क्या करें? पानी को बाहर निकालें या छेद को बंद करें? पहला छेद को बंद करें। तो सम्यक दर्शन के माध्यम से छेद बंद होता है, संयम के माध्यम से भी छेद बंद होता है। इसमें छेद हैं, दो छेद पड़ गए नाव में और दो छेद के लिए दो डांट लगाना पड़ेगा। एक मिथ्यात्व का छेद है और एक असंयम का छेद। असंयम के छेद में संयम का डाट लगा दो तो असंयम का छेद बंद हो जाएगा, और मिथ्यात्व के छेद में सम्यक्त्व का डाट लगा दो वो भी बंद हो जाएगा। परंतु पहले पुराने समय में, पूर्व काल में, जो कुछ भी पानी आकर के नाव के अंदर ठहर गया है, स्टॉक हो गया है, उसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बाल्टी लेना पड़ेगा या तो एक घड़ा लेना पड़ेगा या कोई और पात्र लेना पड़ेगा। उसको ले करके जो कुछ भी ठहरा हुआ पानी है थोड़ा थोड़ा करके निकाल। कर्मों को एक साथ निकाला नहीं जा सकता, कम से कम अंतर मुहूर्त तो लगता ही है। जीव को कितना भी शीघ्र मोक्ष मिले, अंतर मुहूर्त से कम, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर तो मोक्ष किसी को होता नहीं है। नाव को खाली करने के लिए अंतर मुहूर्त चाहिए पड़ेगा, छेद को बंद करने के लिए उसके लिए भी अंतर मुहूर्त चाहिए पड़ता, क्योंकि करण करने पड़ते, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में भी और संयम की प्राप्ति के काल में भी करण परिणाम तो करने पड़ते ही हैं। संयम धारण करने जा रहे हैं या सम्यक दर्शन धारण करने जा रहे हैं तो अंतर मुहूर्त काल वहां भी लगने वाला है। अब संयम तो धारण कर लिया, अंतर मुहूर्त भी लग गया उसमें, किंतु मोक्ष प्राप्ति में कितना समय लगेगा और अंतर मुहूर्त लगेगा, और अंतर मुहूर्त को लेकर के कर्मों को एक साथ नाश कर सकते हैं, घाती कर्मों को भी और आघाती कर्मों को भी नाश करने के लिए अंतर मुहूर्त लगेगा, लगेगा ही। अंतर मुहूर्त में इतने स्पीड से कर्मों को बाहर निकालना है तो ध्यान में विशेषता भी चाहिए, ध्यान विशिष्ट चाहिए। विशिष्ट ध्यान के माध्यम से ही यह सब कुछ किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये हमको समझना है, संवर का डांट हम कैसे लगा रहे हैं, छोटा लगा रहे हैं, छोटा लगा रहे हैं। हाँ, लीक तो है, प्रतिमा भी धारण करेंगे तो लीकेज तो रहेगा। 11 प्रतिमा भले ही धारण कर लो लेकिन लीकेज रहेगा, इसलिए उसको संयमा संयम कहा है। असंयम का जल भीतर प्रवेश कर रहा है और जितने प्रमाण में डांट बैठ गया है उतने प्रमाण में रुक भी गया है। संकल्पी हिंसा का त्याग हो चुका है, उद्योगी हिंसा का त्याग अभी नहीं हुआ। उद्योगी हिंसा का त्याग आठवीं प्रतिमा में होगा, आठवीं प्रतिमा में संकल्पी हिंसा का त्याग हो गया है। सर्वप्रथम चार प्रकार के जो हिंसाएं हैं, किस हिंसा को रोके प्रश्न आता है। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, चार प्रकार की हिंसा है। कौन सी हिंसा सर्वप्रथम रोके? संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा को रोके बिना तो अन्य हिंसा रोक नहीं सकते, और अपने जीवन में मुख्य हिंसा जो होती है वो संकल्पी हिंसा ही अधिक से अधिक होती है। लेकिन संकल्पी हिंसा को रोकने के बाद, आरंभी हिंसा को रोकने के लिए उद्योग को रोकना पड़ता है, आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग का मतलब क्या है? आरंभ त्याग जो स्थूल आरंभ हैं वो अलग हैं, और छोटे छोटे आरंभ हैं वो अलग हैं। जैसे आप घर में झाड़ू बोरी लगाते हैं तो भी आरंभ की क्रिया, दशहरे में घर साफ कर रहे हैं और प्रवचन छूट रहा है आरंभ के कारण से, उधर आरंभ प्रारंभ हो गया है तो इधर स्वाध्याय कैसे हो सकता है? छोटी मोटी जो क्रियाएं हैं, घर की क्रियाएं, पानी भरना, घर को साफ करना, भोजन बनाना, घर की प्रत्येक क्रिया में जो हिंसा होती है, इस हिंसा को आरंभी हिंसा कहते हैं। उद्योगी हिंसा अलग होती है। उद्योगी हिंसा तो उद्योग करने से, खेती करने से, नौकरी करने से, व्यापार करने से, आजीविका का जो साधन रूप कार्य है उन कार्यों को करने से उद्योगी हिंसा होती है। आरंभी हिंसा को पहले रोके या उद्योगी हिंसा को? हाँ, उद्योगी हिंसा को, क्योंकि उद्योगी हिंसा को रोकने के उपरांत भी आरंभी हिंसा बचती है। तो ये क्रम है। पहले कौन सी हिंसा रोके? संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा में मैं त्रस जीवों को नहीं मारूंगा और स्थावर जीवों को भी नहीं मारूंगा, अनावश्यक रूप से नहीं मारूंगा। आवश्यक रूप से तो हिंसा होती है, उसको मैं टाल नहीं सकता, किंतु विवेक से चलूंगा। खाना बनाना है तो विवेक से बनाएंगे। संकल्पी हिंसा का त्याग। जिन जीवों को बचाया जा सकता है उन जीवों को बचा करके ही हम खाना बनाएंगे। तो क्या करेंगे? जी जल को अवश्य छानेंगे। जल को छान करके भी खाना बन सकता है, छाने बिना भी बन सकता है। छान कर उनके प्राणों की रक्षा करके हम खाना बनाएंगे। ये क्या हुआ? ये संकल्पी हिंसा का त्याग कहलाया। भगवंतों ने हिंसा से मुक्त होने का जो मार्ग दर्शाया है वो अद्भुत है, इसलिए हिंसा के भेद किए गए। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये क्रम ठीक है। पहला कौन सा? संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। लास्ट में कौन सा छूटेगा? विरोधी हिंसा। पहला कौन सा छोड़ना? संकल्पी हिंसा। इसको सावधानी के साथ हर काम करते समय अनावश्यक हिंसा न हो ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। अनावश्यक हिंसा न हो ऐसा सावधान रहना। सबसे ज्यादा हिंसा किस चीज का उपयोग करने में होती है? पानी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो खाना पकाने में, पीने में, कपड़े धोने में, घर साफ करने में, हर जगह पानी का प्रयोग होता है। पानी संबंधित हिंसा अगर बचाना प्रारंभ कर दें तो बहुत कुछ उस हिंसा से मुक्त हो सकते, बहुत कुछ हिंसा से आप मुक्त हो सकते हैं। करो, शुरू करो, प्रमाद नहीं। जिनवानी सुन ही रहे हैं तो कहीं से तो कुछ करना तो चाहिए। शुरू करो, ये प्रत्येक व्यक्ति को होना संभव है। नहीं हो सकता? हो सकता। कपड़े धो रहे हैं तो उतना ही पानी का प्रयोग करो जितना आवश्यक है, नहा रहे हैं तो उतना ही नहा लो जितना आवश्यक है। व्यर्थ जो फेंका जाता है या चाबी शुरू करके रखा जाता है वैसा तो काम मत करो ना। बर्तन धोने में जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोग करो। धोने की स्पीड कम है और पानी गिरने की स्पीड ज्यादा है तो इसमें कौन सी हिंसा होगी? संकल्पी हिंसा, अनावश्यक हिंसा संकल्पी हिंसा के कोटि में है। वह अनावश्यक हिंसा होगी तो ये संकल्पी हिंसा ही हो रही है। जो हमें मारना नहीं चाहिए हम जानबूझकर मार रहे हैं, जो हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए हम जानबूझकर प्रमाद कर रहे हैं। बहुत विवेक से चलना पड़ता है, मानव जीवन है अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए प्राप्त हुआ है। इन्हीं प्रतिमाओं का स्वरूप समझना है। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? जिस प्रतिमा में श्रावक सम्यक दर्शन के शंकादि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता से रहित होकर निष्ठा के साथ सम्यक दर्शन पालन करने वाले होते हैं, वह इसके साथ 8 मूल गुणों का भी निर्दोष पालन करते हैं, उसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। यह दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। 3-4 बिंदु इसमें ध्यान में रखने लायक है। सबसे पहले सम्यक दर्शन को निर्दोष पालन करना, 25 दोषों से रहित, पहली बात। दूसरी बात निष्ठा यानी दृढ़ता, दृढ़ता के साथ सम्यक दर्शन पालन करना ये आवश्यक है। पहली प्रतिमा में प्रतिमा धारण कर लिया तो दृढ़ता भी चाहिए। अपने पास जो सम्यक दर्शन है वह जरा कमजोर सम्यक दर्शन, जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ में लकड़ी होती है और उनका हाथ कमजोर रहता है इसलिए लकड़ी हिलती रहती है, हाथ कपता रहता है तो लकड़ी हिलती रहती है, ऐसा सम्यक दर्शन पंचम काल में हम सबके पास है। हाथ मजबूत नहीं है इसलिए लकड़ी नीचे गिर सकती है, फिर भी हम अच्छी तरह से यदि पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे हाथ में से लकड़ी छूटने वाली नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन को हमें मजबूत धारण करना है। मजबूत धारण करने के लिए क्या करें? मजबूत धारण करने के लिए 25 दोषों का बार बार चिंतन करते रहे। 25 दोष क्या होते हैं इनका बार बार चिंतन मनन करना ये आवश्यक है। तो सम्यक दर्शन में एक निष्ठा आएगी, दृढ़ता आएगी। दृढ़ता के बिना तो सम्यक दर्शन, लकड़ी गिर गई तो फिर प्रतिमाएं रह गई तो मिथ्या रहेंगे क्या सम्यक रहेंगे? वो तो मिथ्या हो जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन को संभालना परम आवश्यक है। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन एवं 8 मूल गुणों का निर्दोष पालन। 8 मूल गुणों का स्वरूप समझ में आया? उनका निर्दोष पालन करना ये भी आवश्यक है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के ही अंग हैं। उनके बिना तो सम्यक तो टिकता नहीं है। 2 तरफ ध्यान रखना है, सम्यक दर्शन के 25 दोष न लगे इसकी सावधानी, और 8 मूल गुणों में क्या क्या हमने संकल्प किया है। संतोष वृत्ति को धारण किया है ना, तो संतोष वृत्ति से असंतोष के ओर नहीं बढ़ना, संतोष वृत्ति में ही रहना। ये प्रथम लक्ष्मण रेखा है जो खींची गई मोक्ष मार्ग में पाप को रोकने के लिए। अपना जीवन संतोषी नहीं बनता है तो व्रती भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि व्रत लेने के उपरांत उस संतोष वृत्ति में जो संकल्प हुआ था कि अधिक आशा अधिक विकल्प नहीं करूंगा, इस प्रकार जो संकल्प हुआ था उस संकल्प के पश्चात जो कुछ भी सामने हैं परिग्रह, इसको भी कम करते हुए मुझे जाना है और वृत्ति बनना है, प्रतिमाधारी बनना है। स्थूल पापों का त्याग आठ मूल गुणों से हो गया, परंतु इसमें और भी जो पाप लग रहा है उस पाप को रोकने के लिए वह प्रतिमाधारी बनने का प्रयत्न करता है। अब ये स्थूल पाप नहीं है, कहेंगे स्थूल ही, क्योंकि उस स्थूल से इस स्थूल में अंतर है। सूक्ष्म पापों का त्याग मुनि दशा में ही संभव है, स्थूल पापों का त्याग श्रावक अवस्था में होता है। श्रावक अवस्था में स्थूल पापों का त्याग होता है। लाइट की जरूरत है। तो आठ मूल गुणों का निर्दोष पालन करना और सम्यक्तों का निर्दोष पालन करना, इसे ही दर्शन प्रतिमा कहा है। इस दर्शन प्रतिमा में इतना ही इसका स्वरूप है, तो पहली प्रतिमा को हम क्यों न लें, ऐसा विचार आ सकता है। परंतु प्रतिमा लेने से पहले ही इसका आप पालन कर रहे हैं और चतुर्थ गुण स्थान है, तो आठ मूल गुण के धारी तो है ही, इसमें अब आकर के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो कुछ नहीं करना है तो नीचे ही रहना, चौथे गुणस्थान ही ठीक है। कुछ भी नहीं करना है तो नीचे रहना। जिनको दूसरी प्रतिमा लेना है उन्हीं को पहली प्रतिमा लेना चाहिए, अकेला पहली प्रतिमा को लेना ठीक नहीं है। उससे कोई पंचम गुणस्थान होगा ऐसी परिकल्पना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, और ये दर्शन प्रतिमा शेष 10 प्रतिमाओं के लिए पाया है। तो पाया के वास्ते बताया है, इस पहली प्रतिमा के बिना शेष प्रतिमाएं मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं, असयम की कोटि में आते हैं। इसलिए पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा रखा, सम्यक दर्शन का पालन इसमें मुख्य हो गया। यानी 10 को सफल बनाने की शक्ति पहले में है, इसलिए बताया। और पहली प्रतिमा जैसा पालन चौथे गुणस्थान में क्या नहीं हो सकता, हो ही रहा है। आठ मूल गुणों का पालन कर रहा है और सम्यक दर्शन का भी पालन कर रहा है, तो चौथे गुणस्थान के इस आचरण को, मूल गुण के आचरण को पहली प्रतिमा क्यों न कहा जाए, तो ऐसा भी नहीं, उसको पहली प्रतिमा भी कह नहीं सकते। क्यों? प्रतिमा के तरफ अभी अपेक्षा नहीं, प्रतिमा की ओर बढ़ूं इस प्रकार की अपेक्षा नहीं, और प्रतिमा की ओर बढ़ने वाला सीधा बढ़ने वाला भी तो होता है ना। चौथे गुण स्थान से ही प्रतिमा की ओर बढ़े ये कोई नियम नहीं है, पहले गुण स्थान वाला भी प्रतिमा की ओर बढ़ सकता है। तो आठ मूल गुणों को धारण नहीं करना और सम्यक दर्शन को धारण नहीं करना, चतुर्थ गुण स्थान में नहीं जाना, पहले तो ऐसा नहीं करना, सीधा ही पंचम गुण स्थान में जाना चाहता है, तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो उनके उद्देश्य से ये पहली प्रतिमा का विधान हुआ है यहां। पहले वाला, पहले गुणस्थान वाला सीधा पंचम गुणस्थान में जा रहा है, तो क्या दूसरी प्रतिमा को धारण कर ले सीधा? उनके लिए भी तो सम्यक दर्शन का विधान है। हाँ, पहले किए बिना तो दूसरा हो सकता है, लेकिन मिथ्या रहेगा, बाह्याचरण रूप रहेगा, अंतरंग कषायों का त्याग नहीं हो पाएगा, मिथ्यात्वादि का त्याग नहीं हो पाएगा, इसलिए भाव वृत्त अनुवृत्त प्रकट नहीं होंगे, द्रव्य अनुवृत्त तो प्रकट हो जाएंगे। तो द्रव्य अनुवृत्त बाहरी आचरण रूप है, हम किसी जीव को हिंसा नहीं करते, आचरण चल रहा है, परंतु कर्म निर्जरा नहीं हो रही है, कर्म का संवर ही नहीं हुआ तो निर्जरा कहां से होगी? तो कर्म का संवर किससे करें हम? प्रतिमा से करें। किस प्रतिमा से संवर होता है? भाव प्रतिमाओं से संवर होता है, और द्रव्य प्रतिमाएं भाव प्रतिमाओं की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। द्रव्य भाव को जगाने का माध्यम है, और भाव किसका माध्यम? संवर करने का माध्यम। भाव प्रतिमाओं को धारण करने से संवर होता है, और फिर तप करने से निर्जरा भी होती है। उपवास करो, कोई बात नहीं, उपवास तप है। एकासन करो, एकासन तप है। ऊनोदर करो, ऊनोदर तप है। सभी करो, परंतु संवर करके करो या संवर किए बिना करो? तो संवर का माध्यम क्या है? सम्यक दर्शन और संयम। सम्यक्त्व के साथ प्रतिमाधारी बन करके करेंगे तो कर्म की निर्जरा होगी, असंयमी की निर्जरा नहीं होती। चौथे गुण स्थान में भले ही वह 41 प्रकृतियों का संवर कर चुका है, लेकिन उन कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणित यदि करना चाहते हैं तो यह संयम के बिना संभव नहीं है, संयम धारण करना ही पड़ेगा। एक देश संयम धारण करते ही प्रति समय असंख्यात गुणित निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से तप भी करेगा, संयम तो साथ में है, संयम के द्वारा संवर हुआ, अब तप के माध्यम से कर्म की वह निर्जरा करेगा, तो तप भी करे। क्या करके करे? प्रतिमाधारी बन करके तप करेंगे तो विशेष लाभ है, और प्रतिमाधारी बने बिना तप करेंगे तो इतना लाभ नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि उपवास कर रहा है, बहिरंग तप कर रहा है, छह प्रकार के, तो इतना लाभ नहीं है। क्यों? संवर नहीं हुआ, डांट नहीं लगाया, छेद तो खुला है, और घड़े से भर भर करके निकाल रहे हैं, जितना निकाला उतना छेद से और अंदर पानी आ गया, तो थोड़ा बहुत तो कम करो उस छेद को, बड़ा है, थोड़ा छोटा डांट लगा दो, छोटा डांट प्रतिमा, दो प्रतिमा का डांट लगा दो उसमें, चलेगा। छेद तो 4 इंच बड़ा है, और हमारा डाट जो है वो 2 इंची बड़ा है, तो 50% पानी को रोका जा सकता है। तो जितना डाट मिला है उसके अलावा तो पास में कुछ भी नहीं है, तो सर्वप्रथम जितने से रोक सकते हैं उतना ही रोकना चाहिए, दो प्रतिमा का डाट उसमें लगा दो, और उतना लगा दिया तो 4 इंची पानी तो नहीं आ रहा है ना, अब तो 2 इंची पानी आ रहा है, और 2 इंची पानी आ रहा है तो 2 इंची के हिसाब से तप भी कर लो, तप कर रहे हैं तो 2 इंची के हिसाब से जितना रोका है उस हिसाब से उतना ही कर्म की निर्जरा आपको हो सकती है। तो संवर के बिना निर्जरा नहीं होती है, यह मोक्ष मार्ग है, निर्जरा मोक्ष का कारण है। और वह निर्जरा संवर और संवर के बिना नहीं होता है, इसलिए सम्यक दर्शन भी अनिवार्य हो गया, प्रतिमाएं भी अनिवार्य हो गई। अब प्रतिमा को थोड़ा थोड़ा करके लेते हुए आगे बढ़ना है, तो कितना लेना है? पहले दो प्रतिमा लेना है, कम से कम दो ले लें। दो का अभ्यास हो गया तो शेष का अभ्यास हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बता रहे थे। प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक संसार शरीर व भोगों में अनासक्त भाव वाले होते हैं, और प्रथम प्रतिमा से ग्यारहवीं प्रतिमा तक के समस्त श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं। पन ये बता रहे थे कि दर्शन प्रतिमा को केवल स्वीकार करके रहना वस्तुतः पंचम गुणस्थान का कारण नहीं बन सकेगा। संकल्प पूर्वक कोई व्रत लेना ही व्रत कहलाता है। अभ्यास पूर्वक जो हम व्रतों का पालन करते हैं वो व्रत की कोटि में नहीं आता, और उससे संवर और निर्जरा भी प्रारंभ नहीं होती। संकल्प के बिना संवर और निर्जरा नहीं होती, ये ध्यान में रखना चाहिए। संकल्प के बिना कर्मों का संवर और निर्जरा नहीं है, ये निश्चित बात है। महाराज अभ्यास तो उस प्रतिमा वाले जैसा करते हैं वैसा ही कर रहे हैं हम, तो निर्जरा क्यों नहीं होती? निर्जरा नहीं होगी क्योंकि संकल्प नहीं है, अभी डांट लगाया नहीं है, लगाने का विचार चल रहा है, अभी डांट को हाथ में उठाया है लेकिन अभी लगाया नहीं। डांट को उठाया है, उसको संभाल रहे हैं लेकिन अभी लगाया नहीं गया। लगाने का नाम संकल्प, लगाने के बाद हो गया संकल्प। लगाने से पूर्व जो कुछ भी आप करते रहते हैं वो संकल्प की कोटि में नहीं आता, अभ्यास की कोटि में आएगा। पहलवान का मैदान में कुश्ती खेलना अलग बात है और अखाड़े में अभ्यास करना अलग बात है। अखाड़े में जो अभ्यास करता है उस समय बख्शीश क्यों नहीं मिलता? प्रैक्टिस कर रहा है, वहां कहां बख्शीश मिलेगा? भले ही वो दूसरे को गिरा रहा है, बहुत अपना शक्ति बता रहा है और जीत भी गया है, फिर भी देखने वाले 5 रुपए भी निकाल करके नहीं दे रहे हैं। और मैदान में गिराता है तो हजारों का पैसा मिलता है। तो संकल्प का कितना महत्व है? संकल्प तो मैदान है, संकल्प अर्थात तो मैदान, और अभ्यास अर्थात अखाड़ा। अभी मैदान में मत उतारो, अभी अखाड़े में आ जाओ, थोड़ा अभ्यास करो, हो जाएगा। थोड़ा 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 करके अभ्यास कर लो, एक साल में सब कुछ अनुभव मिल जाएगा। पहलवान जैसे अखाड़े में सभी दांव पेच पता लगाता है ना, वैसे प्रतिमाओं में क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ क्या समस्याएं आती है, कठिनाई आती है, ये एक साल डेढ़ साल के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभ्यास अभी से करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो शुरू करो, अखाड़े में आओ। यदि पहलवान बनना चाहते हैं अखाड़े में आओ, कर्मों के साथ लड़ना है, कर्मों को पछाड़ना है, गिराना है, धराशायी करना है, तो अखाड़े में उतरो, डरो नहीं। भ्यो नका संयम धारण करा। आत्मा भावों से भरा, संयम धारण करा। वृत्त प्रतिमा किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न निकालो। वृत्त प्रतिमा किसे कहते हैं? जिस प्रतिमा में श्रावक पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इनका सम्यक्त्व सहित निर्दोष निष्ठा से पालन करते हैं, उसे द्वितीय व्रत प्रतिमा कहते हैं। निष्ठा, इन बारह अनुव्रतों के प्रति निष्ठा यानी श्रद्धा, दृढ़ता, निश्चलता, निश्चलता धारण करके पालन करना। किंतु इस लक्षण के अंदर एक बात और ध्यान में रखना आवश्यक है। उमास्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में कहा है, निश्चल्यो वृत्ति, वृत्ति शल्य रहित होता। शल्य तीन प्रकार के होते, मिथ्या, माया और निदान। ये तीन शल्य हैं। मिथ्या शल्य, मिथ्या तो गुणस्थान में ही होता। माया शल्य पहले गुणस्थान में, निदान शल्य पहले गुणस्थान में। ये शल्य हमको पहले गुणस्थान में रोकने के लिए कारण बनता है। इसलिए पहला क्या करना चाहिए? शल्य मुक्त होकर के ही व्रतों का पालन करना चाहिए। निदान शल्य क्या है? निदान करना, जो व्रत धारण करने जा रहे हैं उससे पुण्य भी संग्रहित होगा, उस पुण्य के फल स्वरूप कोई भौतिक कामना करना, ये निदान शल्य है। लेने से पहले ही इच्छा, कामना, कामना पूर्वक ही व्रतों को धारण किया तो क्या होगा? निदान होगा, निदान शल्य होगा। इस शल्य से बचकर के व्रतों को धारण करना ये आवश्यक माना गया। निदान शल्य आ गया तो वहां पर माया शल्य भी है ही, क्योंकि जिसकी इच्छा रखना चाहिए था उसको नहीं रखा, और जिसको रखने को मना किया है उसी को रख रहे हैं, तो ये मायाचारी हो गई, ये माया शल्य। और ये दोनों मिलकर के हमको प्रथम गुण स्थान में रखते हैं। माया शल्य और निदान शल्य ये दोनों है तो हमारा गुणस्थान कौन सा? पहला। तो मिथ्यात्व का उदय भी रहेगा और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहेंगे। परिणाम तो पहले से ही थे, तो ये जो परिणाम है माया शल्य के साथ और निदान शल्य के साथ, ये हमको मिथ्यात्व की कोटि में रख रहे हैं। तो ये तीन शल्य हैं। शल्य से रहित प्रतिमाओं को धारण करने का उपदेश शास्त्रों में दिया गया है। सम्यक्त्व सहित यदि अनुव्रतों का पालन किया जा रहा है, प्रतिमाएं धारण की जा रही है, तो नियम से शल्य रहित होता ही है। कहना नहीं पड़ता कि शल्य रहित होना आवश्यक है। सम्यक दर्शन है तो निदान शल्य नहीं कर सकता सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि निकांक्षित अंग को धारण किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो कांक्षा से मुक्त होकर के जब सम्यक दर्शन धारण कर रहा है तो निदान शल्य भी कैसे कर सकता है? इसलिए लक्षण के अंदर इतना ही जो कहा है वो उतना भी पर्याप्त है। क्या कहा है? जिस प्रतिमा में श्रावक पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों का सम्यक्त्व सहित निर्दोष निष्ठा से पालन करते हैं, उसे द्वितीय प्रतिमा कहते हैं। ये ठीक है, सम्यक दर्शन हो गया तो हो गया, शल्य आ नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों शल्य प्रथम गुण स्थान में आते। अगला स्वरूप, व्रत प्रतिमा के 12 भेदों के नाम कौन कौन से हैं? व्रत प्रतिमा के भेद, सबके पास पुस्तक है ना, अब देखो वहां पर। पहले क्या बताया, 5 अनुव्रत, अनुव्रत में इनको भी स्थूल ही कहना चाहिए, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। श्रावक को अपरिग्रह व्रत रहता है या परिग्रह प्रमाण अनुव्रत रहता है, ये भूलना नहीं चाहिए। संपूर्ण परिग्रह का त्याग हो गया तो उसको कहना चाहिए अपरिग्रह, यानी परिग्रह का अभाव, अ यानी अभाव, परिग्रह का संपूर्ण अभाव जहां होता है वहां अपरिग्रह महाव्रत होता है। किसको होता है? मुनियों को होता है। और परिग्रह प्रमाण, ये प्रमाण शब्द जुड़ गया तो ये किसका होता है? श्रावक को होता है। परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, अनुव्रत कहलाया, अनु यानी छोटा, अनु यानी छोटा, ये अनु शब्द कौन सा है? तत दद न और टट डड न, इन दो में से कौन सा है? टट डड न। देखो अनु शब्द भी लिखा जाता है, दोनों शब्द हैं अनु और अणु। अणु का, अनु का अर्थ होता है तत द न वाला नंबर न, वो अगर है तो उसका अर्थ निकलता है अनु यानी पीछे, अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाला, उसमें अनु नु लग गया, तद न वाला नंबर न लग गया। और अणु टटड न वाला, उसका क्या मीनिंग? छोटा, अणु, परमाणु, अणु, अणु लिखते हैं ना, अणु को अणु क्यों कहा? वो छोटा है इसलिए अणु कहा, और उससे छोटा होने से परमाणु कहा, परम अणु, परम सूक्ष्मता जिसमें हो वो परमाणु। जो जितना छोटा होता है उसको अणु शब्द से कहते हैं। हाँ, एक परमाणु को दो भाग नहीं कर सकते इसलिए उसको अणु कहा। तो ये अनुव्रत यानी छोटे व्रत, ऐसा अर्थ है। और यदि हम ऐसा लिखें कि अहिंसा अनुव्रत ततदद न वाला भी लिख सकते हैं, यदि लिखते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा? हाँ, संयम के, देखो अहिंसा धर्म है, अहिंसा धर्म तो हिंसा का जहां अभाव है उसी को अहिंसा कहते हैं, लेकिन उस अहिंसा को ही पूर्ण बनने के लिए जो पीछे पीछे चलने वाले व्रत होते हैं उनका नाम अनु, अहिंसा आदि अनुव्रत, यानी संयम के अनुगामी व्रत जो होते हैं उनको अनुव्रत कहते हैं, संयम के अनुगामी यानी महाव्रतों के अनुगामी, महाव्रतों को अभ्यास करने के लिए उनके पीछे चलने के लिए जो व्रत होते हैं वे अनुव्रत यानी छोटे व्रत, यानी पीछे पीछे चलने वाले व्रत, व्रत दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टटडड न ये अगर लगाएंगे तो छोटा ऐसा अर्थ निकलेगा, और ततदद न वाला लगाएंगे तो पीछे पीछे चलने वाले व्रत ऐसा अर्थ निकलेगा। समझ में आ गए ना? 5 अनुव्रत होते हैं, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। यदि मुनियों को लगाएंगे तो कैसा लगेगा? अपरिग्रह महाव्रत, यहां महाव्रत लगाना, महाव्रतों में महाव्रत और श्रावकों के लिए अनुव्रत। अहिंसा महाव्रत ऐसा कहेंगे मुनियों के व्रत को, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। इनका स्वरूप रत्नकरण श्रावकाचार्य में बहुत विस्तार से बताया गया है, कैसे इनको पालन करना, इनकी भावनाएं कितनी होती हैं, इनके दोष कितने होते हैं, ये भी सब बताया गया है। तत्वार सूत्र में भी है और श्रावकाचार्य रत्नकरणक श्रावकाचार्य ग्रंथ में भी है, वहाँ से इसको पढ़ करके समझना चाहिए, क्योंकि एक एक बातें वहाँ पर बहुत अच्छी लिखी। ये हो गए पंच अनुव्रत। फरक देखो, वहां आठ मूल गुण में भी यही थे, उनको भी स्थूल कहा था, और यहां पर दूसरी प्रतिमा में भी ये पांच अनुव्रत आ रहे हैं, इनको भी स्थूल कहा है, परंतु इसमें हिंसा बहुत कम हो रही है और उसमें केवल संतोष वृत्ति आने से अनावश्यक हिंसा मात्र कम हो गई थी, अनावश्यक हिंसा कम हो गई थी। यहां पर आवश्यक हिंसा में भी कम करना प्रारंभ हो गया है। हमारे लिए जितना परिग्रह चाहिए उतना रखा है और बाकी को त्यागा है। तो संतोष वृत्ति में क्या था, संतोष भाव भी सबसे बड़ा धर्म है, प्रारंभिक धर्म है, उस धर्म को हमने धारण किया था। संतोष वृत्ति के कारण से ये परिग्रह इतना मुझे आवश्यक है कहा था, लेकिन इसके पश्चात भी इतना परिग्रह मुझे आवश्यक नहीं है, ये बहुत ज्यादा है और मेरे जीवन के लिए जितना चाहिए उतना रखूंगा कह करके रख दिया और बाकी का त्याग कर दिया। तो एक दूसरी रेखा खिंच गई, पहले लक्ष्मण रेखा संतोष वृत्ति वाली रेखा, दूसरी रेखा परिग्रह को ही कुछ त्याग करने का, कुछ कुछ यानी कितने इसका कोई गणित नहीं बता सकते कि इतना ही उतना ही, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार रखना है और आवश्यकता के अनुसार त्यागना है, ये निरंतर चलना चाहिए। ऐसा नियम नहीं है कि एक बार तुमने आपने जो संकल्प ले लिया तो इतना तो ले लिया है इसी को जिंदगी भर पालन करूं, ऐसा नहीं, और भी कम करना है तो कम कर सकते हैं, वह भी अहिंसा परिग्रह प्रमाण अनुव्रत में ही आएगा। पहले बहुत थोड़ा बहुत हिंसा ज्यादा होती थी, अब उसमें भी आप कम कर रहे हैं तो और कम होगी, और कम कर सकते हैं तो और कम करेंगे तो और कम होगी, हिंसा कम होती जाती है। इस प्रकार 11 सीढ़ियों में बाह्य परिग्रह को कम करता हुआ जाता है, और किसको देता है परिग्रह, किसको देता है, कम कर रहा है तो कम किया हुआ किसको दिया जाए, अपनी संतान को दे सकता है, और संतान नहीं है तो क्या करेगा, तो उसको धर्म कार्य में लगा करके दान दे करके पाप से निवृत्त हो जाता है। तो जिसके माध्यम से आयतन आदि का निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण होता है, धर्मशालाओं का और त्यागी निवास इत्यादि का निर्माण कार्य तो होता ही है, इसमें वह अपने धन का सदुपयोग करता है। यह है पांच अनुव्रत, इनका लक्षण वहां पढ़ करके समझ सकते हैं। जिनको प्रतिमा लेना है ना, वो एक बार सभी लोग सामने आ जाएं, अच्छी तरह से और समझाना है, अकेले में समझाना है। कितने लोग थे, 27 लोग, सबको खबर दे दो कि प्रतिमा का अभ्यास अगर करना ही है तो उसको अच्छी तरह से अपने को समझना है और एक समय निश्चित कर लो, उस समय में आना। दोपहर को आ सकते हैं, 2 बजे के बाद। कब आएंगे? 27 ही लोग आना। हाँ, 27 ही, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और आपके लिए भी बहुत सारे प्रश्न रह सकते हैं, उनका शंका समाधान भी लेना है। व्यक्तिगत रूप से चर्चा होगी, आपको क्या क्या कहाँ कहाँ समस्या है, ये शंकाएं भी हो सकती है, उसका निवारण अभी नहीं मिला है। तो शंका समाधान के साथ अभ्यास प्रारंभ करना है। तो कब आएंगे? संडे को? संडे के दिन तो और टाइम नहीं मिलता। नहीं, 2 बजे के बाद का जो समय है उस समय 1-1.5 घंटा मिलता है। हाँ, सत्ताईस कौन कौन है? हाथ उठाओ फिर। ये कि अकेले हैं, कहाँ हैं सभी? तो वही तो बता रहे हैं ना, जो जो नहीं आए हैं उनको खबर दो। गांव गए कौन? दोपहर को आना है, ऐसी क्लास नहीं लेंगे। सिर्फ कैसे पालन करना, क्या करना, ये सबको बताएंगे, किस समय क्या क्या करना पड़ता है आपको। ऐसा कहने के बाद जो अभ्यास होगा वो निर्दोष होगा और फिर योग्यता आएगी। नाम नहीं दिया है। यहाँ पर कितने हैं लोग जो हाथ उठाए थे 10 लक्षण में? यहाँ पर तो 3-4-5 लोग हैं। इधर 1-3 है। हाँ, अभ्यास करना हो, अभ्यास करना है, अभ्यास करना हो तो आ सकते हैं आप। हाँ, 10 लक्षण में हुआ था ना, वो सभी दशरे में उलझ गए। तो अकेले कहाँ है, हम आए नहीं गए आपके साथ। आप डूब रहे हो तो हम पकड़ेंगे क्या? नहीं, सिखाने वाले तो हम हैं, आप डूबेंगे नहीं। वही तो सिखाना है। दोपहर में कब बैठेंगे? 2 बजे। किस दिन? दिन फिक्स करो, क्योंकि अपने को भी टाइम निकालना पड़ेगा उस हिसाब से। हाँ, नहीं, कई को 4 दिन, 1-2 दिन, 1-1.5 घंटे 2 बार भी मिल जाए, हो जाएगा। 1-1.5 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। 2 दिन तो 1.5 घंटा अगर अखंड निकालते हैं तो 1 ही दिन में हो जाएगा। 1.5 घंटा यानी कम से कम 2-2.5 घंटा बैठना पड़ेगा। फिर 1 दिन बैठना, वो सब समझाना है। सभी समझाएंगे कहाँ कहाँ अटकन है। हाँ,